ज्ञानत निरानंदस्स ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
नमो नमः
वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय अङ्गश्यामले चटाभियन्ते मन्दिरकेन्दिरवरम् जड्डञ्जाबुदरोचि सङ्गविदधतं पटम्बरस्य वृन्दान्ननिवासिनं मृदुलशब्दामाधिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेऽहं दामोदरं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे हम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच ब्रह्म के संबंध में समय किया। महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी की पूर्व पक्ष के उठाए गए सारे तर्क वितर्क को खंडन कर दिया और सर्वशेष सर्वशक्तिमान परब्रह्म कृष्ण को स्थापित किया और कहा वंदे
नंद अहो
भक्तम ब्रह्म सनातनम
अहो भक्तम अहो भक्तम अहो भक्तम
नंद गोपदोपसम अहो भक्तम नंद गोपदोपसम जन्मिंदम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण के लिए स्थापित किया। इसके बाद में आत्मा रामस्य मुनयो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने नौ प्रकार के अर्थ किए, महाप्रभु ने उसको नौ को न छू करके 18 प्रकार के अर्थ कर दिया। तब उनका दिमाग चक्कर में, ये साधारण आदमी नहीं हो सकता। तब मन ही मन में महाप्रभु के शरणागत हुए, महाप्रभु जी ने सर्वभुज रूप दर्शन दिया और बोली ये किसी को मत कहना। महाप्रभु तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु के गढ़ों में उनकी गिरनी होने लगी। यहाँ तक कि मुक्ति प्रदेश दाय भाग न कर करके भक्ति प्रदेश दाय भाग कहा। प्रभु जी ने कहा इसके दो अर्थ होते हैं, मुक्ति पद, मुक्ति पद है जिनका आश्रय और जिनके चरणों में मुक्ति है, मुक्ति पदे,
मुक्ति जस पदे इति
वो कृष्ण के लिए कहा। इसलिए पाठ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। सार्वभौमाचार्य में आप तो कहते हैं ठीक है, किंतु मेरा मन और मुक्ति नाम लेने में भी घृणा करता है, इसलिए मैं मुक्ति पद नहीं कह सकता। और महाप्रभु जी के प्रधान प्रधान भक्तों में इनकी गणना होने लगी। महाप्रभु जी ने कहा मैं दक्षिण में जाऊंगा, विश्वरूप को
ढूंढने
देखने के लिए कि हमारे भाई कहाँ हैं, किस रूप में हैं। उन लोगों ने कहा कि आप हम लोगों में से जिसको एक आदमी को संग लीजिए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से नहीं लेंगे। उन्होंने काला कृष्ण को, दास को, एक ब्राह्मण है वो आपका कड़वा जल पात्र वहन करेगा, आप इसको साथ में लीजिए। उनके कंडीशन को साथ लिया। अब दक्षिण भारत की तरफ में चले, धीरे धीरे विजयनगर में पहुंचे, जहां प्रताप रुद्र के पिताजी ने यहाँ के राजा को हरा कर उसकी राजकुमारी को पकड़ कर ले आए, मोर सिंहासन ले आए,
साक्षी गोपाल
को वहां से ले
आए, भंड गणेश
भट्ट गणेश को भी पकड़ करके लाए थे, जो अभी जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में है। और एक विग्रह था उसको राधाकांत मठ में रख दिया।
राधाकांत विग्रह
इस तरह से अभी भी उनकी सेवा हो। दूसरे दिन गोदावरी नदी को पार कर विजयनगर में, इधर में है उधर में है, यहाँ पर राय रामानंद गवर्नर थे, क्या नाम है उसका,
कबूर
वहां पर पहुंचे। सवेरे पहुंच करके संध्या लेकर के महाप्रभु गंभीर हो करके बैठे हुए थे। और इसके बाद में राय रामानंद गोदावरी में स्नान करने के लिए बाजे गाजे और ब्राह्मणों के स्तुति के बीच में आए। उस समय क्या हुआ, अभी श्रीमान
वन महाराज जी कुछ बोले, কালকে পৌনে সাতে এসছিল, কালকে ছটা পঞ্চাশে এসছিল, কালকে এখানে ছটা পঞ্চাশে এসছিল, এখানে ওই পিছনে এসে বসেছিল, ছটা পঞ্চাশ
চলে গেছে,
ছিল ছটা পঞ্চাশ পৌন সাতটা বাইরে তখন এসছিল।
Hearing the explanation of Mahaprabhu, that Sarvabhauma Bhattacharya's mind began reeling. This is not any ordinary person. He must be Krishna himself, and he completely surrendered himself at the feet of Srimad Mahaprabhu. From that day on, he became one of the main associates of Mahaprabhu. One or two days later, Sarvabhauma Bhattacharya was explaining the verse, Kathenukam Bhattacharya Srimiksama. So finally, he cut out the word Muktipat Sadevat and put Bhaktipat. How astonishing, the person who had dedicated his whole life to explaining Mukti, 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 now he could not even bear to hear the word Mukti. There were two explanations of the word Muktipad. Mukti always rests at the feet of Bhakti. That means when one has Bhakti, one automatically achieves Mukti. There is no need for any separate in the other. So then Mahaprabhu decided, I will go to South India. On the excuse I want to meet my elder brother, Vishnu, and find out what happened to him. The other devotees headed by Nityananda said, you should take someone with you to look after your cloth, to cook for you. Then Mahaprabhu said, I won't take any of you. I will take an independent third party. So that was Krishna Das. So Mahaprabhu began to head towards South India. Then heading down he came to Vijayanagara. Vijayanagara had already been captured by the father of Ganapati Kalaburuta. When he went there, the king of Vijayanagara had sent his daughter to Jagannath Puri to be married. But then he withdrew his daughter. There was some disrespect. So the father of Kalaburuta Raj went to Vijayanagara. He captured the girl. He captured the peacock throne. He captured the deities of Sakshi Gopal and Radha Kanta, and also one deity of Ganesh called Banda Ganesh. Finally, Mahaprabhu came to the holy river, Kuvaya, Kabul, and there on the bank, he took his bath and sat for his Sandhya Anek, his Gayatri Mantra. He was in a very grave mood at that time when Ramananda Roy, who was like the governor of Vijayanagara, he came accompanied by many musicians playing instruments as well as many brahmanas chanting Vedic mantras.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare सचिनंदन गौधरी राधा भाव राधा भाव और शांति लेकर के इस कारण से जगत में प्रकट हुए हैं राष्ट्रीय मनोमहिमा इस श्लोक की शिला प्रकांड वर्णन करते हैं। जब तक पिशाखा उनके चरण आश्रय नहीं करे वह भाव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सचिनंदन गौधरी सन्नाथ के उपरांत और जगन्नाथपुरी के पश्चात जब उपस्थित हुए हैं और वह गोदावरी के दर्शन करके जमुना ज्ञान करके स्मरण महाप्रभु भाव के विभोर हो गए। कृष्णदास के क्या दर्शन स्पष्ट वर्णन करते हैं, गोदावरी देखी प्रभु भैया जमुना उद्दीपन, जमुना के देख के गोदावरी को देख लिए जमुना की उद्दीपन हुई। असीमान महाप्रभु वह हाथ छोड़ छोड़ करके एक किनार में जाकर के बैठे, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ये सचिनंदन गौर भरी जो भाव का आस्वादन कर केवल एक श्लोक में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। कहते हैं संचार राम जीवित भक्त मेघे प्रभुष्टि सिद्धांत स्वयं प्राणी गौरा प्रवृत्ति अमुना तदर गत रत्नालय प्रजाति। श्री कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं संचार के रामाजी भक्त मेघे सचिनंदन गौधरी रत्नालय समुद्र कहा गया, जिस पर हम स्वयं पांच भक्ति पंच के सूत्र में सबको वर्णन कर रहे ये भक्ति कृष्ण स्वयं जो है रसपुर है रस रसपुर से जीवन रक्षा मंदिर भगवती और समुद्र रत्न आदि समुद्र में ही प्रकट होते हैं। और आरामानंद क्या है भक्त में भक्त रूपी पादों जिस प्रकार सूर्य ग्रह के द्वारा समुद्र के जल के शोषण करके और वाषीभूत करके जैसे पादों प्रकट करते हैं और कई पादों क्या करते हैं जब वो जब में समुद्र के जल में जब खारिज हो जाए
धर्म के संशोधन करके शुद्ध निर्मल जब वो समुद्र पुनः भसन करते ठीक उसी प्रकार शरीर में कौन हुई सर्व समस्त वस्तु आधा आधे सब कुछ होकर के पाएगी और अपने भक्त भी आनंद के हृदय में और भक्तिर भी बादल रेत को जो है संचार करने क्या संचार करने श्रुक्त प्रकार के रस तत्व जो है उनके हृदय में अवच्छित रूप में संत राष्ट्र सत्व वास्तव माधुर्य ये समस्त रस को उनके हृदय में स्थापित किया और इस प्रकार वह बालक एक विशेष क्षण पर पता करने पर समुद्र में जो सीप प्रकट हुए वो सीप क्या करते हैं इस प्रकार से सात्विक राजस्वी के जल सीप के मुख पर पड़ने पर जैसे मुक्ता बनते हैं उसी प्रकार रायवण श्रीमान महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा से लोग अवक्षी रूप में जिस उसको भाव अपने हृदय में प्रकट हुई उसको भाव को पुनः चैतन्य महाप्रभु महासमुद्र में पुनः वर्षण करें जिससे अनेक प्रकार के रत्न आदि अपने आप प्रकट होते जा रहे इसमें कार्य क्या विद्युत रत्नालय प्रजाति इसे समुद्र के कहा जाता है रत्न के आलय कहा जाता है उसी प्रकार चैतन्य महापुरुष सचिनंद कौन हुए समस्त रसों के तत्व रस के आधार आदि सब कुछ होते हुए पाएंगे भक्त के मुखार बिंद से ये समस्त रस के साथ सुन करके गृह में गदगद हो गए और इसको भाव को व्यक्त कर रहे हैं इससे रायमंदिर की सरकार ने श्री गुरु महाराज जी अनेक प्रकार अनेक समय बहुत इसको व्याख्या दी थी इस कथा को हर साल गुरुदेव वर्णन करते कम से कम हम लोग 25 बार इसको श्रवण करके आ रहे हैं इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं संक्षेप में इसे बताया श्रीमान महाप्रभु रायमंद के निकट जो बैठे और यही प्रश्न पूछने लगे प्रभु बड़े प्रश्न साधे लगी नाय राय बड़े सब मात्र में विष्णु भक्ति है
इसके बाद में बोलो महाप्रभु जी ने हमको सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने और राय रामानंद ने कहा क्या
महाप्रभु जब राय से जब घाट पर बैठे रायमंद पालकी में चढ़ करके जब स्नान कर लिए पधारे और रायमंद श्रीमान महाप्रभु के दिन को काम की और उन भजन और श्रीमान महाप्रभु के भाव संकीर्तन देख करके उनके हृदय में कितने प्रकार के रसों की विचार देख करके रायमंद चकित हो गए आश्चर्य हो गए और वे रायमंद ने कहा कि पद से उतर करके श्रीमान महाप्रभु के आलिंगन की और एक दूसरे के आलिंगन करके भाव में विभोर हो गए और वैदिक ब्राह्मणों में आश्चर्य हो गए ये सन्यासी और रायमंद सूत्र सूत्र हो या सन्यासी को एक कहना आलिंगन विकास के लोग तक ये सोच करे पारोनिष्ठ जो ब्राह्मण श्रीमान महाप्रभु और रायमंद के भाव समझने में सके श्रीमान महाप्रभु ये सोच भाव को उस लोगों के निकट गोपन किया और श्रीमान महाप्रभु फिर मुंह मांगने लगे उस समय एक वैदिक ब्राह्मण आकर वैदिक वैश्व ब्राह्मण आकर के महाप्रभु के निमंत्रण किया श्रीमान महाप्रभु उनके निमंत्रण स्वीकार किया श्रीमान महाप्रभु रायमंद के बोले आपके निकट मैं वार्तालाप करूंगा और उस समय बोले भक्ति की क्या रायमंद बोले प्रभु जब आप आए हैं इस संस्कार कार्य करने आते हैं दस आप हमारे साथ में बैठे दस दिन तातकार जगत जीवन तातक तुम्हार गरीब को संगे रायमंद ने कहा प्रभु दस दिन के बाद क्या है आपके साथ जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपके साथ में मैं ये सब कथा जो है कीर्तन मैं करूंगा और रायमंद उस पर श्रीमान महाप्रभु कहने लगे देखो मैं तो सूत्र मैं तो सन्यासी शिव मात्र हूँ मेरे तो हृदय में कुछ नहीं है किंतु आपकी जो महिमा मैंने सर्व भक्ता चंद्र के मुख से मैं श्रवण किया था सर्व भक्ता चंद्र मुझे कहा ये प्रभु जब रायानंद अम्ल के सभा में जब बैठते थे वो केवल राजा गोकुल के कथा चर्चा करते थे उस समय उनको ये सोच करके हम लोग उपहास करते थे महाभारत है इतने बहुत
से कैसे आपके महिमा सुना, आप कोई महिमा मैं देख रहा हूँ। इसी प्रकार के प्रेमी भक्त प्रेमी भक्त भी जान सकते हैं। दूसरे व्यक्ति जिसे आचार्य पाठ स्मरण टीका में लिखते हैं श्री भक्तिनाथ प्रभुपाद अशोक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, वैसा वैष्णव भी जान सकते हैं और वैष्णव वैष्णव तो भी जान नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे। इसलिए श्रीमान महाप्रभु के हित का जो भाव रायवंद और रायवंद के हित का जो भाव श्रीमान महाप्रभु अनुभव किया, इसके आगे जाकर के कथा इसी प्रकार है। श्रीमान महाप्रभु जब वो वही ब्राह्मण के घर में जब बैठे और वहां उत्पन्न थे, दोनों की इतने उत्कंठा हो गया रात्रि काल में, दोनों बैठे और रायवंद के साथ श्रीमान महाप्रभु के वार्तालाप होने लगे। इस कथा में महाप्रभु यही प्रश्न पूछा, प्रभु कहे और लोग साथे
बस एक बस टोल
अज्ञान
राय रामानंद मेट महाप्रभु and fast hard dialogue was there. महाप्रभु बोले कि पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय सर्वत्र प्रमाण दिवे
शास्त्र
बोलते पाए
महाप्रभु इज लाइक एन ओशन गॉड ऑफ डी एंड द ओशन ऑफ द पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट यू
मोर लाउडर
द ओशन ऑफ द पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट यू बट विदाउट द रेन ऑफ स्वस्ति नक्षत्र यू विल नॉट मैनिफेस्ट दैट पोटेंशियल सो हियर महाप्रभु इज कंपेयर्ड टू एन ओशन And Ramananda Rao is compared to that cloud which takes the water from the ocean and distributes it again to the ocean in the form of those dew. Which type of dew? Mahaprabhu was asking questions and Ramananda Rao was answering. This rain, quote unquote, of answers was in the form of the realization of the feelings and moods of Srimati Radhika that Mahaprabhu wanted to taste. He had the knowledge of it, the gyan of it. Gurudev, I remember, said that in Jagannath Puri years ago. He had the knowledge of those anubhavs, but not the realization of them. So when he was asking questions and Ramananda Rao was answering those questions, this was coming to him in the form of those jewels of realization. So Mahaprabhu came in the evening to take his bath in the bank of the Godavari. At the same time, Ramananda Rao came with a big procession of Brahmins, many musical instruments. He was a big governor, a big person coming to take his bath there with a great pomp. And Mahaprabhu was as a simple sannyasi. And when they met, they saw each other. Oh, immediately Ramananda Rao came to Mahaprabhu. And lo and wonder, all the Brahmins were looking. What is this? Sannyasi, who is supposed to keep away from man interested in palms, shilling and pence, embracing the Shudra. Also, he was the governor, he was considered belonging to the Shudra caste. So what is the sannyasi who is supposed to have nothing to do with mundane people, embracing this low caste person? They were very, very astonished. They were so happy to meet each other, and had a very hard time to restrict their ecstasy. When Mahaprabhu saw that the Brahmins were at this mentality, he restrained himself. At that time, a Brahmin came and invited Mahaprabhu, please come and take lunch at my house. And Mahaprabhu and Ramananda Rao, they agreed that they would meet each other in the evening. Mahaprabhu told Ramananda Rao, actually, I'm the Mayavadi sannyasi, but Sabababa Bhattacharya, now to give me favor, has told me that I should meet with you. And Ramananda Rao in the same mood of humility, because without humility one cannot get anything in the bhakti path. In a mood of extreme humility, he said, oh, Sabababa Bhattacharya has always been very kind with me.
therefore you have sent me to you so I can get some benefit. So each other way complimenting each other. No, no, you are the great one, I am the low one. No, no, you are great, I am low, like that. Then this wonderful conversation took place between them, Kovananda Samba. Gurudev says, just like if you take away the five chapters of Ras Panchatela from the Bhagavatam, then nothing is left. If you take away Ramananda Samba from the Chaitanya Charitamrita, what is left? Zero. Nothing is left there. No? So Mahaprabhu asked Ramananda Roy, you please quote a verse from Shastra. And Ramananda Roy started to
should go on or
shlok after the shabd. No, stop. Tumi Bangla te bolo. महाप्रभु ने सर्वत्र शास्त्रे प्रमाण दी साध्य निर्णय करो
আমরা কয়েকদিন যাব সারুম ভট্টাচার্য এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তালাপ শ্রবণ করেছি। হ্যাঁ, তিনি আত্মার আমার মনের কথা এই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাও আমরা শ্রবণ করলাম। আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মহারাজ আদেশ করছেন যে প্রভুরে রায় রামানন্দ মিলন সম্বাদ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন প্রভুরে শ্রী রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন হল, মহাপ্রভু তিনি গোদাবরীর তীরে তিনি বসে আসেন, তার অপূর্ব দেশ দর্শন করে রায় রামানন্দ তিনি মুহিত হয়ে গেলেন। তাই তিনি ধীরে ধীরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছেন যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে বলেছেন যে দক্ষিণ দেশের গোদাবরীতে রায় রামানন্দ আছে, আপনি অবশ্যই তার সঙ্গে একসঙ্গে দেখা করবেন। তিনি রসিক ভক্ত, আমি এতদিন বুঝতে পারিনি, যেহেতু আমার হৃদয়টা মায়াবাদের দ্বারা দূষিত ছিল, আপনার কৃপায় আজ আমার সেই দূষিত ভাবটা দূরীভূত হয়েছে। এখন আমি আপনার কৃপায় ভক্তি তত্ত্ব বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি। সুতরাং এই জ্ঞানের দ্বারা আমি বুঝতে পেরেছি রায় রামানন্দ কত উন্নত ধরনের বৈষ্ণব বা ভক্ত। সুতরাং আপনি অবশ্যই দক্ষিণ দেশে, কারণ দক্ষিণ দেশটা যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শৈব প্রধান জায়গা, বিষ্ণু মন্দির খুবই কম, এই জন্য আপনি অবশ্যই গোদাবরীতে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করবেন। ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যখন রায় রামানন্দ এলেন, এসে তার দেশ দর্শন করে মুহূর্তে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন, দুইজনের অষ্টশক্তি বিকার হল, কিন্তু আশেপাশে যারা ছিল সবাই দেখে অবাক হলেন, আরে ইনি হচ্ছেন সন্ন্যাসী আর ইনি হচ্ছেন শূদ্র। শূদ্র তো সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী শূদ্রকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ আছে বেদে। তা উনি আবার আলিঙ্গন করলেন, দুইজনে আবার কোলাকোলি আলিঙ্গন করে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। যাই হোক, তা এখন পরে বিজাতীয় লোক থাকার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করে তিনি বললেন, সন্ধ্যের সময় তুমি আসবে, একাই আসবে নাহলে একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, এত ওই হাতি ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে আসবে না, স্বাভাবিক পেশে বৈষ্ণব পেশে তুমি আমার কাছে আসবে। পরবর্তীকালে রাত্রিবেলা রায় রামানন্দ যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন দিনহীন বেশে, কারণ দিনের অধিক দয়া করেন ভগবান, কুলীন পণ্ডিত ধনে পর অভিমান, এই জন্য দিনহীন ব্যক্তিকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করেন। তাই তিনি দীনতা বেশ ধারণ করে যখন এলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন যে পরস্পর সাধ্যের নির্ণয়, সাধ্য বস্তু কি জিনিস, সাধ্য মানে আমরা কি চাচ্ছি, আমাদের প্রয়োজনটা কি, সাধ্য আর সাধন, সাধন করে যাহা লাভ করা যায় তার হচ্ছে সাধ্য, আমাদের এই জীবের সাধ্য তত্ত্ব কি। তখন উনি বলেন যে সুষ্ঠুভাবে যদি কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, এটি হচ্ছে ওতে ভগবান সন্তুষ্ট হন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যিনি যে বরণে আছেন সেই বর ব্রাহ্মণের কি করণীয়, যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয় রাজ্য রক্ষা করা, আর বৈশ্যকে ব্যবসা বাণিজ্য করা, শূদ্র হচ্ছে তিন বর্ণের সেবা করা। এর ভিতরে শুধু এটা করলেই যে সুষ্ঠুভাবে সদর্ম আচরণ হবেন, বিষ্ণু সন্তুষ্ট হবেন তা নয়, কেন্দ্র থাকবে ভগবান। ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি ওটা করা হয় তবে হবে, আর যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম যে পালন করা হয় যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা, কিন্তু ভগবান ওর মধ্যে নেই, ভগবানের প্রীতি বিধানের কোনো অনুষ্ঠান নাই, তাহলে সেটাকে সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম আচরণ যাজন করা হলো না। ক্ষত্রিয় হলো বৈশ্য হলো শূদ্র হলো, মানে এর মূল কথা হচ্ছে ওই ভগবানের প্রীতি বিধান করা।
বর্ণাশ্রম ধর্ম কেন ইহ বাহ্য, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নাই, এই মূল কারণ। আত্মানুবন্ধী ধর্ম নয়। দ্বিতীয় কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন যদি ভালোভাবে করে তাহলে বেশি সে বেশি এই লোকেতে সুখ সমৃদ্ধি হবে এবং বেশি সে বেশি স্বর্গ লোক যাবে, আবার ফিরে আসবে, এই জন্যে ইহো বাদ।
এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে বিরক্ত হলে যে আমরা সবচেয়ে বড় হয়ে গেলাম, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বললেন এটা বাহ্য, তার মধ্যে আমাদের এই ভগবানের প্রীতি বিধান কতটুকু আছে কোন সংসারের মধ্যে সেটা আমাদের দেখতে হবে।
But one brief point. I think many of you do not know the purpose for which Sri Chaitanya Mahaprabhu came to meet Roy Ramananda. When Srila Gurudev describes this discussion, he relates this to the original topic that we discussed, why is Sri Chaitanya Mahaprabhu coming to this world? He's coming to this world to understand and taste and experience the glory of Srimati Radhika's love. So Gurudev mentioned that he went down to South India to find his brother Vishwaroop. His associates in Jagannath Puri. This is an external reason. His actual purpose was to meet Roy Ramananda. Why? Who is Roy Ramananda? Roy Ramananda in Vrindavan is Vishakadevi. Sri Chaitanya Mahaprabhu's purpose in coming to this world is to understand the moods of Srimati Radhika. So Srila Gurudev has often compared the discussion between Sri Ramananda, Roy, and Sri Chaitanya Mahaprabhu as Mahaprabhu going to the school of Srimati Radhika. Because Vishaka, Sri Ramananda Roy, was born on the exact same day as Srimati Radhika. She has the same moves, the same features. She's almost identical with Radhika. So Mahaprabhu is getting instruction on the moves of Radhika from Sri Ramananda Roy. And so the discussion is progressing. He's asking, what is the highest goal of life? What is the highest way and the means to attain it? And so what we're going to hear step by step is a progressive theistic conception.
This side also.
Oh yeah.
There are so many people.
Thank you.
Don't go and leave.
Thank you.
Tomorrow morning leaving, he'll go, leave this and go into
progressive theistic conception, whereby step by step, we're getting a higher and higher understanding of the goal of life and how to achieve it.
The first answer that Srimad Bhagavad Gita
was the process of born ashram dharma.
Born
ashram charitata purushaya parakuman krishna aradhita kumkhanta nanya tathosya karnam. That the process of executing one's duty.
Jai Tukaman then Satya.
Yes, it's
here.
Yes, it's here. Yes, it's here.
The purpose of executing varnashram is to please the Lord by one's occupational duty. And in Bhagavad Gita also, Krishna said, Shatra Bhanda Mayastarashtam Gurad Karma Vibhagasaha. I established this social system by which humanity could gradually purify itself by performing occupational duties according to caste and stage of life. That the purpose is to ultimately sansigya haritoshana. Srimad Bhagavatam says, Atakpumbir Prita Sreshta Varnashrama Vibhagasaha Samishtatasya Dharmasya Sansigya Haritoshana. The purpose of Varnashram is ultimately to please the Lord. But Atakpumbir Prita Sreshta Varnashrama Vibhagasaha. Most people who are performing Varnashram Dharma are performing it for fruit of result, for elevation to the higher planetary systems, for advancement in worldly enjoyment in this life, acquisition of wealth, knowledge, and even liberation. The problem with Varnashram Dharma, however, is that it doesn't speak to the activities of the soul. Mahaprabhu, when he's asking for the highest duty, the highest ultimate goal of life, he's talking about the highest attainment of the soul. And this will be explained step by step as we progress from Varnashram to Karma Mishra Bhakti to Dhyana Mishra Bhakti, on and on. But Varnashram is at the very lowest rung, and it only addresses the gradual progressive development of the individual practitioner. Only when Roy Ramananda begins to describe the activities of the soul proper will Mahaprabhu become satisfied. So at this point Mahaprabhu says, no, Eho Bhagya, this is external, please go on.
Bande Guru Pada Dandam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandana Bande Radhika Charana Dayam Gopi Jana Samajita Vrindavana Manoharam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
मैं सबसे पहले
অস্মদীয় গুরু পাদ পদ্ম ওম বিষ্ণু পাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্লোক আনন্দ স্বামী মহারাজ এবং ওম বিষ্ণু পাদ পরিব্রাজকাচার্য বর্য অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত শ্লোক নারায়ণ স্বামী মহারাজ চরণকমলমে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ড জ্ঞাপন করতাম তৎপশ্চাৎ উপস্থিত নিপাতগণ এবং বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গৌর কার্যক্রমের দণ্ডবত প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন শিল গুরুদেব রামানন্দ সংবাদ কে বারে মে আলোচনা করতে আদেশ দিয়া হ্যাঁ রামানন্দ সংবাদ মে আপনি শুনা কেসে মহাপ্রভু সাথে রামানন্দ রায় কাজ মিলন হুয়া মহাপ্রভু রামানন্দ রায় সে কহা
এখানে বসে বললে আমিও শুনছি
कैसे रामानंद राय के साथ महाप्रभु का मिलन हुआ आप लोगों ने सुना। इस रामानंद संवाद में श्रीमान महाप्रभु ने कहा सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचने जो कुछ आप कहेंगे ये सर्वसम्मत होना चाहिए अपने मनमानी कहने पर नहीं चलेगा। इधर महाप्रभु लोग शिक्षा दे रहे हैं हम कभी भी हरि कथा कहेंगे प्रामाणिक होना चाहिए। इस रामानंद संवाद में जब दोनों में आलोचना चल रही थी उस समय चार बार महाप्रभु ने कहा यह वाच्य तीन बार बताया यह हर दो बार बताया उत्तम फिर आखिर में आके बताया यह शब्दावधि। इसमें चार बार यह वाच्य क्यों कहा तीन बार यह हर क्यों कहा दो बार यह उत्तम क्यों कहा हम परवर्ती वक्ता से श्रवण करेंगे। पहले जो महाप्रभु ने कहा परश्लोक साध्य निर्णय उस समय रामानंद राय ने जो उत्तर दिया इसको महाप्रभु बाह्य यह वाच्य बता दिया। ये जो श्लोक उद्धृत किया असल में हरि कथा चल रही थी ओर्व मुनि और सगर ऋषि दोनों के बीच में। सगर महाराज जो प्रश्न पूछा था ओर्व मुनि इसका उत्तर में इस श्लोक का उद्धृत किया था। महाप्रभु इसको यह वाच्य बता दिया क्योंकि जीव का स्वरूप होता है कृष्णदास कृष्ण की सेवा करना ही उनका कार्य है इसमें आत्मा का कोई परिचय नहीं है। हम जो कृष्णदास है इसमें कोई कृष्णदास का परिचय नहीं है इसमें तो समाज का परिचय है इससे अधिक नहीं। लोग स्वधर्म आचरण क्यों करते हैं हमारा संसार ठीक रहे मेरा बाल बच्चा ठीक रहे मेरा उन्नति हो इससे अधिक नहीं सब शरीर संबंधित है। महाप्रभु बता दिया महाप्रभु के उपरांत रामानंद राय ने कहा कि कृष्ण कर्मार्पण यह शब्द सार कृष्ण कर्मार्पण यही सर्वश्रेष्ठ है। उदाहरण दिया प्रमाण दिया क्योंकि महाप्रभु का पहले शब्द था शास्त्र से प्रमाण देना पड़ेगा तो बताया यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी जत यह तपस्सी कौनते तब पुरुषम दर्पणम। इसमें श्रीमद महाप्रभु के कहने पर रामानंद राय ने भगवत गीता से श्लोक उद्धृत किया ये उद्धृत करने के बावजूद भी महाप्रभु यह बाह्य बता दिया। महापुरुष कृष्ण ही है और कृष्ण ही महाभारत युद्ध में शांति पर्व में बताया था ये इसको जब दरगाह इसमें रूप में कहा महाप्रभु सचिनंदन गौधरी के रूप में इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों इसमें जो कृष्ण कर्मार्पण है इसमें भी आत्मानुबंधी सेवा कोई नहीं है ये कर्म मिश्रा भक्ति है। भक्ति तीन प्रकार है आरोप सिद्धा संग सिद्धा स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा भक्ति ही यथार्थ भक्ति है ये तो आरोप सिद्धा है इसमें आरोप कर रहे हैं ऐसे करने पर भक्ति होगी असल में भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए कहा गया प्रहलाद महाराज ने बताया सरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक्षम आत्म निवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति से नव लक्षणा क्रियेत भगवत तथा तन मन ने अधिक उत्तम। प्रहलाद महाराज ने बताया था हिरण्यकशिपु को समस्त जगत को शिक्षा देने के लिए
इति पुंसा पिता विष्णु, सबसे पहले आपको विष्णु के चरण में अर्पण करना पड़ेगा। जब विष्णु गाने पर पहले आश्रय विष्णु, उसके बाद विषय विष्णु। इसमें जो जपकरसी जपस्वासी कहा गया, इसमें क्या है? पहले अर्पण अपने को अर्पण नहीं किया गया है, अपने को अर्पण ना करके पहले जो हम कर रहे हैं उसको अर्पण कर रहे हैं। इसमें महिमा में मैं करने वाला हूँ, मैं ये करो मैं भगवान को दे रहा हूँ। हम भगवान को देने वाले कौन है? ये भगवान किसी चीज है? पहले अपने को अर्पण करो, अपने जो अहंकार है, अभिमान है, व्यक्त अभिमान, इसको पहले भगवान गुरुचरण को अर्पण करो। करके जब करेंगे तभी भक्ति होगी। इसमें पहले तो अर्पण अपने को अर्पण नहीं किया, और अपने अभिमान में मैं करने वाला हूँ, मैं करके ये भगवान को दे रहा हूँ। इसलिए ये कर्म निष्ठा भक्ति, ये आरोप सीता शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए महापुरुष को उत्तम नहीं कैसे भाई ने बता दिया, और अपने को अर्पण करके ये करते जो प्रहलाद महाराज ने बताया, तन मन ने अधिकम उत्तम तो उत्तम उत्तम भक्ति होती, तो इसमें उत्तम नहीं है। इसलिए महापुरुष को यह भाग्य बता दिया। ये कहने के उपरांत जो महापुरुष ने कहा यह भाग्य, तो रामानंद राय ने कहा सधर्म त्याग विष्णु भक्ति है। अपने धर्म को त्याग करने पर उदाहरण दे रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या बोले सर? सर्व धर्मान परित्यज्य, एक तो हम धर्म करने के लिए आए हैं, और इधर इसमें कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, तो भक्ति कहां से होगी? हम करेंगे क्या? सर्व धर्मान परित्यज्य कहने पर इसका पूरा रहस्य है। जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हारा जो दोस्त तुम सोच रहे हो दोस्त नहीं लगेगा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अर्जुन सोच रहा हो मैं युद्ध कैसे करूं, गुरु हत्या ही महान भागो, मैं कैसे गुरु हत्या करूं, सज्जन को हत्या करूं। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में बताया, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण आप मुझे जो अपने गुरु को अपनी भाताओं को सबको हत्या करने का रहे, कि आपने कभी आपके गुरु को हत्या किया था? अगर नहीं किया हो तो मुझे क्यों उपदेश दे रहे हैं? इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये अर्जुन नहीं सोच रहे हैं, जब तक कि अर्जुन कृष्ण के द्वारकाधीश परिकर है, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए अब तक की भांति अभिनय कर रहे हैं। तो ये जब उनको अर्जुन को डर लगा, मैं कैसे करूं, कृष्ण के बात कैसे मानू, कृष्ण के बात मानने जाऊं तो बहुत सारा दोष दिख रहा है, और कृष्ण के आदेश पालन करना ही भक्ति है। तस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टम्। तो कैसे करूं? जब अर्जुन के अंदर भय है, डर है, धकधकी है, तब कृष्ण कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, जो शरीर धर्म है, लोक धर्म है, समाज धर्म है, इस सब को छोड़ो। कृष्ण नहीं कहा अर्जुन को कि भागवत धर्म को छोड़ो, जैव धर्म को छोड़ो, विमल प्रेम धर्म को छोड़ो, ये नहीं कहा। ये शरीर के साथ जितने प्रकार के धर्म युक्त है उस धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज। व्रज अगर मेरे शरण में आ जाओ, क्यों? भगवान क्या कौन है? भगवान से ही सब धर्म निकलता है, इसमें शास्त्र जनित्व कहा गया है। भगवान ही समस्त शास्त्र के मूल है, भक्ति के मूल है। और भागवत धर्म क्या है? भगवत प्रोक्तम भागवत धर्म। भागवत क्या है? भगवत इदम भागवतम, जो भगवान कहा भगवान के लिए जो कर किया जाए, वही भागवत है, वही भागवत का प्रतिपाद्य है। इसलिए जो शरीर संबंधी धर्म है उसको त्याग करने कहा गया। शरीर संबंध को त्याग करने पर यदि किसी प्रकार के दोष हो, कृष्ण कह रहे हैं मैं कृष्ण को क्षमा कर दूंगा, चिंता मत करो। दूसरे का शास्त्र में कहा गया, भगवान ने कहा मत कर्म प्रियतान विप्र प्रिया लोग को भवे यदि तस्य कुर्वन्तं तिस्य कोटि महर्षय। ये वेद भागवतम में टीका में कहा, लक्ष्मण गोस्वामी पाद ने भगवान ने खुद कहा कि मेरे कर्म करते हुए यदि किसी प्रकार सामाजिक क्रियालोपाति हो जाए, उसके लिए मैं 300 करोड़ ब्राह्मणों को वहां से नियुक्त हो गया उसको पूरा करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा सब धर्म छोड़ो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये जब अर्जुन ने कहा तब भगवान सचिदानंद गौड़ ने कहा गया ये वाच्य, ये भी वाच्य है, ये भी ठीक नहीं है। ये सुनने के उपरांत तब महाप्रभु ने जब बताया तब जमानंद साहब ने कहा ज्ञान निष्ठा भक्ति ये शब्द सार इसमें कोई आत्मा का संबंध नहीं है, ये सभी तो बने शरीर तो शरीर के एक एक रिलेटेड है, पता है ये कितने बार सुनते था। तो ज्ञान निष्ठा भक्ति सर्व साध सार इसमें ज्ञान निष्ठा बताया ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पदम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा जो ब्रह्म भूत है सब समय ब्रह्म की चिंता करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, उसी में आनंद लाभ करते हैं, न सोचति न कांक्षति किसी प्रकार वस्तु के लिए आकांक्षा भी नहीं करते और किसी प्रकार के लिए शोक भी नहीं करते और सम सर्वेषु भूतेषु समस्त प्रकार प्राणियों में समदृष्टि है, ऐसे होने पर भी भक्ति नहीं होगी। मद भक्ति लभते परम वह साधु संघ में आते हैं तभी उनको भक्ति होगी, वह साधु संघ न हो उनका जितना भी है ब्रह्मभूत या प्रसन्न आत्मा शोक नहीं करना आनंदित रहना सब बेकार की बेकार है। जब तक सुखदेव गोस्वामी स्वामीपाद ये ब्रह्मभूत थे जब तक श्री व्यासदेव के संघ में नहीं आए तब तक उनका किया हुआ सब कुछ बेकार था, जब श्रीमान श्री व्यासदेव के संघ में आए उनका संग किया तभी वो जाके परम भक्त बने और सुखदेव गोस्वामी के लिए सनातन गोस्वामी पाद अपने देवगढ़ टीका ने कहा ये गोपी भाव प्राप्त ये गोपी भाव प्राप्त है संग्रह नहीं है। इसलिए ये जब तक ये ब्रह्मभूत व्यक्ति साधु संघ में नहीं आएंगे तब तक इनका सब किया हुआ विकार है, इसे मद भक्ति लभते परम ऐसे ब्रह्मभूत व्यक्ति की साधु संघ में आते हैं तब उनकी पराभक्ति होगी, क्योंकि भगवान कैसे गुण है भगवान और भगवान के कथा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का ऐसे गुण है कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ गुरुक्रमे कुर्वन् चरित किं भुक्ति नित्यभूतो गुणो हरि। भगवान के ऐसे गुण है हरि कथा में ऐसे आकर्षण है ऐसे ब्रह्मभूत व्यक्ति को भी आकर्षण करके अपने चरण में लगा लेते हैं। जो हमने कल श्रवण किया कि सार्वभौम भक्ति नौ प्रकार व्याख्या किया महापुरुष का अर्थ को न स्पर्श करके अठारह प्रकार की व्याख्या किया, जब बाद में सातवें प्रश्न में पूछा था तब चौसठ प्रकार व्याख्या करके सुना दिया, ऐसे भगवान की कथा में गुण है। फिर भी इसमें स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसमें भी आत्मा का कोई विकास नहीं है, ये सत्संग की महिमा दिखा सत्संग में आने पर ही तभी पराभक्ति होगी नहीं तो नहीं। ये महाप्रभु कुछ संतुष्ट हो रहे हैं लेकिन परिपूर्ण रूप में इसने ये भी वाच्य बता दिया, ये वाच्य बताने के बाद राघवेंद्र ने कहा ज्ञान सुनना भक्ति सर्व साध सर शास्त्र प्रोटेशन दिया ज्ञाने प्रयास मधुपासन अनंत एव जीवन की सम्मुखतां भवतीय वार्तां स्थाने स्थिता स्थितिवतां तरुवान मनोगी प्रायोस अजित अजित उपसित स्त्रीलोक्राम। भगवान कौन है अजित जिनको कोई जीत नहीं सकते, भगवान किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते इसके नाम अजित है। अजित होने पर भी अपनी विशेषण क्या दे रहे हैं उसको कैसे जीता जा सकता है इस श्लोक में बता रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उपासन मानते वो करे ज्ञान के प्रयास छोड़ो कौन सा ज्ञान, ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, एक तो तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान में तत्व पदार्थ ज्ञान तम पदार्थ ज्ञान जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान ये सब स्पेशली जीव ब्रह्म तत्व ज्ञान छोड़ने के लिए कह रहे हैं और इतने तत्व ज्ञान का जब छोड़ना पड़ेगा। श्री गुरुदेव जब विदेश में बहुत बार प्रचार में कहा जब हमारे और स्पिरिचुअल ग्रंथ आया नित्यानंद प्रसन्न जी के बाद श्री अभोग के स्वामी महाराज विदेश में गए थे सब को बताया ये तुम लोग समझो कि हम आत्मा है कृष्ण स्वयं भगवान है। गुरु जी ने कहा मैं विदेश में आ गया कहने के लिए पहले हमारे शिक्षा गुरु पाद ने बताया था कृष्ण स्वयं भगवान है इसको भूल जाओ इसको मैं भुलाने के लिए आया हूँ और जब तक तत्वज्ञान रहेगा तब तक प्रेम भक्ति स्फूर्ति नहीं होगा, प्रेम पहले तत्वज्ञान चाहिए। जैसे आप खुद बड़ा दलान बना रहे हैं आपके भित्ति स्ट्रॉन्ग ना हो देश बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे पहले तत्व ज्ञान चाहिए। लेकिन आप प्रेम लाभ करने के लिए तत्व ज्ञान को भूलना पड़ेगा। कौन सा तत्व ज्ञान? कृष्ण स्वयं भगवान है। आपके कृष्ण के साथ लौकिक सद्बंधुवत आप व्यवहार करना पड़ेगा। ज्ञान प्रयास नमंत ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके नमन करना पड़ेगा। किसको किसको प्रणाम करना पड़ेगा? जो हरिकथा को आयोजन कर रहे हैं आयोजकों को, और जो हरिकथा कर रहे हैं उनको, दर्शकों को, जो भी किसी भी तरह से इसके साथ लेते हैं उनको प्रणाम करना पड़ेगा। जीवन के सम्मुख ज्ञान भवदीय वार्ता, वो लोग क्या करते हैं? भगवान की वार्ता को कहते हैं। इसलिए कहा गया तस्मीन महान मुखरिता मधुमित चरित्र पीयूष शेष परित सरित सवंती कार्य विवंत विधि सनिपदार करण स्थान संतर शोक मोहन। जो भगवान के भक्त लोग हैं उनके हृदय में क्या होता है? इनके सबसे खलबली मचती है, कैसे हरि कथा कहूँ, जीव का उद्धार करूँ, कल्याण करूँ। जैसे मानस सरोवर से बहुत प्रकार धाराएं निकल रही नदियों की, ऐसे ही ये उत्तम भागवत है। उनके हृदय सब समय भगवान की लीला स्फूर्ति हो रही है, वो कहने के आतुर रहते हैं, और जो इस कथा को सुनते हैं श्रद्धा के साथ उनको इस जगत के जो भय महोत्सव स्पर्श नहीं करता। इसे पता है जीवन की सम्मुखता भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता पर भगवान और उनके निजन भववार्ता नहीं का भवदीय भगवान उनके परिकर दोनों के मिला के जब कथा होगी तब उत्तम कथा होगा। केवल कृष्ण के हो तो ब्रह्म हो जाएंगे, पर राधा जी रहेंगे तो सर्वोत्तम होगा। इसलिए कहा राधा बिना सर्व आघात जपो राधा नाम जन्म जन्म के भाग जगाते एक राधे का नाम जपो राधे जपो शाम। केवल कृष्ण के रहेंगे तो ब्रह्म जी भी ब्रह्म हो जाएंगे। इसे भगवदीय कहा गया। आप अगर आपके संबंधीय आपके लीला परिकर के साथ बात होना चाहिए। स्थाने स्थिता श्रुति लता अनुमान मानो भी स्थाने स्थिता जिस स्थान में है जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है उसमें रह करके ये सब करना पड़ेगा। श्रुति लता अनुमान प्राय ऐसे भी करते हैं भगवान प्राय अजित होने पर भी इस प्रकार ऐसे जो भक्त करेंगे उसके द्वारा भगवान जीते जाते हैं। ऐसे कहने के उपरांत आप लोग के मुख में थोड़ा हंसी लोकिन दिखा गया तो बताया ये हो और इसके बाद यह भय कहने के बाद महाप्रभु ने बताया यह भय। तो ब्रह्मानंद ने कहा जब ये सुना महानंद कहना प्रेम भक्ति शब्द सार सब दो उदाहरण दिया। एक है कि नानो का कारण कबूतरा मार को बंधो
आपको कुछ भी मिल जाए आप रुचि के साथ खा लेते हैं, और भूख ना हो तो खाने की इच्छा नहीं है। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान को सेवा भगवान की सेवा करने के लिए भूख हो लड़क हो तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो आपके हृदय में भगवान के लिए यदि न हो सेवा की भूख हो भगवान उसको नहीं करते हैं। इसलिए बताया शास्त्र में जैसे उदाहरण स्वरूप जब द्वारकाधीश कृष्ण पांडव की ओर से गए थे दुर्योधन की सभा के सुलह करने के लिए, बताइए पांच पांडव है पांच गांव दे दो तो मैं इनके कभी सुलह कर लेता हूँ। और दुर्योधन ने बताया नौ दातव्यम सुचक्रे मेदिनी यथा, पांच गांव की बात क्या, सुई के नख पर भी एक जितना जमीन इतना भी नहीं दूंगा। अब जब नहीं हुआ कुछ तब कृष्ण जाने लगे। पहले वो खिला खाने के दिया, भगवान कृष्ण ने बताया मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जिस काम के लिए कोई आते हैं उस काम हो जाए तो खाया जा सकता है, मैं जिस काम के लिए सुबह करने के लिए हुआ नहीं मैं कैसे खाऊंगी। दूसरा कारण बताया कोई काम हो और न हो और बहुत भूख लगे तो खाया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने बताया मैं तो आत्मा राम हूँ आपका काम मुझे भूख प्यास बुझाएगी खाओ कैसे। तीसरी बात आत्मा राम आपका काम हो और न हो काम हो और न हो आपस में प्रीति हो तो खाया जा सकता है तो इसे आपके सामने प्रीति भी है कैसे खाऊं। इसने तुझे इतने मेवा दिया सोने के काल में दिया उड़क के नहीं देखा और तितुर के घर में जाकर तो भूख लग गई केले के छिलके खा लिए। इसलिए ये जब भक्तों को लगा रहे भगवान खिलाने के लिए तब ये खाते हैं। और कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियतांगिनी कुतुओं की लभ होते तथा लोभम के मूल्य में कलम जन्म को सुकृत न लभ होते। इसमें कृष्ण भक्ति रस भाविता मति जो उत्तम भागवत है उनका मति कैसे कृष्ण भक्ति के द्वारा सराबोर है। जैसे गुरुजी उदाहरण देते रसगुल्ला है रसगुल्ला के ऊपर में जो सब रस का रस भरा हुआ है जितने भी आप निचोड़ दें जो लोग डायबिटिक है क्या निचोड़ के खाते हैं जितने निचोड़ मीठा तो रहेगा ही रहेगा हर एक थोड़ा कम हो जाए मीठा तो आप निकाल नहीं सकते हैं हरा नहीं कर सकते हैं। तो उसमें उनके हृदय कैसे है भक्त सराबोर है तो इस प्रकार की कोई मिल जाए उनको खरीद लो कैसे खरीदेंगे लोग के द्वारा उनको खरीदने का हरिगा खरीदने का और कोई मूल्य नहीं है एकमात्र लोग हैं लोग के द्वारा जब खरीद सकते हैं तभी इस लोग के द्वारा वसी उदर का लगातार भक्ति करेंगे तब एक दिन भगवान आपको मिलेंगे। हम लोग के पितामह नित्य प्रशंसा भक्ति करण स्वामी महाराज जब ईश्वर की प्रतिष्ठा की थी तब बताया ईश्वर का ही डेफिनेशन है कृष्ण भक्ति स्वभाविता हम लोग इसके मुख से श्रवण करेंगे आज यही चल रहे
कृष्णाय कृष्णवंताय भगवताय नमो नमः। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर प्रणाम लॉर्ड स्पिरिट श्री गुरु पादपद्म और विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति राम नारायण गोस्वामी महाराज किदानी सन्यासी वैष्णवस वैष्णवीज सच अ बिग सब्जेक्ट प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड द कन्वर्सेशंस बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड श्री रामानंद रॉय। In this pastime, Mahaprabhu is showing, even if you're the Supreme Personality of Godhead, you need a Guru. Therefore, he accepted Sri Ramananda Roy in the form of Shiksha Guru. Also, he said, Acharya Purushoveda, without to show the importance of hearing from superior Vaishnavas, Mahaprabhu, despite being Janak Guru of the three worlds, he took the position of, like disciple, inquiring from Sri Ramananda Roy, what is the ultimate goal of life? And please give some shastric evidence to clarify your position. So here is a gradual progression that the sadhak should develop to achieve the ultimate goal of the service of the gopis. So beginning, Sriman Ramananda Roy tried to establish for the benefit of the world the necessity of following Varnashram Dharma. Varnashrama Acharyavat Purushena Purampuram Vishnuvaranam Panta Namya Tusa Karanam. By following the process of Varnashram Dham established by Bhagavan himself, Vishnu becomes satisfied. Therefore, Chaturveda Maya Sristam Guna Karma Vibhagasam. In Bhagavad Gita, Krishna himself declared, I myself have established this process of four ashrams and four
varnas
for the benefit of the ordinary persons. Because in this world, 99.99% of us are conditioned souls. They are atma-buddhi. We have so much relationship with the stupid mind and body. Therefore, we have completely forgotten our spiritual position. Therefore, if the jiva was allowed to remain unrestricted in their sense enjoyment, then the jiva could achieve no auspiciousness at all. Therefore, for the regulation of the conditioned souls to gradually bring them to the platform of Sattva-guna, Sri Krishna himself established the four varnas and four varnas. Therefore, even though Chaitanya Mahaprabhu declared, Eyo Bhaya, this is external, question comes, for who is it external? Otherwise, why Krishna himself established it in the Vedas? That person who is free from the bodily concept of life, that person has the adhikar or the qualification to give up varnashram. Otherwise, he does not have the qualification and gives up varnashram. What will happen? This will be called neglect of the Vedas and he'll simply go to hell. Therefore, even though varnashram is external and one should give it up, still there's a qualification for giving up varnashram. Therefore, we see many times the jnanis, they give up varnashram because they have no shelter at the feet of Krishna, they fall and are condemned. Therefore, the Vaishnavas, what is the qualification for the Vaishnavas to give up varnashram? Yavat karmani kurvita nami vidyat nyayavara. The qualification is they have so much taste in Harikata. Because varnashram dham has no relation specifically with the eternal dharma of the Atma, nor it has any direct relationship with the service of Bhagavan, then it's considered external. Therefore, it pleases Vishnu, but it does not completely please him. That is the point. So Mahaprabhu rejected it. Evaya agetaha. This is external. Please speak more. So then, Sri Ramananda Roy, he gave the idea of karma mishra bhakti, or karmapan. And Krishna declared in Bhagavad Gita, yat karosi yat asnasa yat yohosi yat asi yat yat tapasvasi kute yat yat karosi mat asana. Krishna says, O Arjuna, whatever you eat, whatever actions you perform, whatever austerities you do, whatever yagya or donations you give in charity, yat karosi mat asana. There was an offering for me. So in his commentary in the Bhagavad Gita, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur says, why Krishna has spoken this verse? Because those persons who have no taste in Sudha Bhakti, by completely giving up all jnana and karma, they cannot do Sudha Bhakti, neither they have taste in Sakam Bhakti, performing mundane activities for material benefit. For that person in the middle position, Krishna spoke this middle verse. And we heard from Pujapad Maharaj, this is called Arop Siddha Bhakti. Why? Because still, you have not developed, the person in this stage has not developed complete Atma-gyan. But in Bhagavad Gita, in the first six chapters, Krishna encourages this person of karma, arpan, bhakti, or karma-mishra bhakti. Why? By offering the endeavors of one's karma to the Supreme Lord, one will become purified. When one becomes purified, what happens? One achieves the qualification of jnana. That means he automatically realizes, I am not the body, I am the soul. By performing jnana properly, by meditating on Paramatma, the process of Astasanga Yoga, gradually he develops the qualification for Sudha Bhakti. Therefore, Mahaprabhu rejected this. Why? Because still the devotee thinking, I am doing this, I am this body, I am a Grihastha, I am a Sannyasi, I am this, I am that, and I am offering my result to Bhagavan. Then I'll tell you a little story. Srila Govinda Maharaj used to say, there were two disciples, and the Guru said, I want you to paint the whole ashram green. There were one disciple, he took a bucket of paint, and all day he's painting the car, painting the doors, painting the buildings. All day he worked, and only half the ashram was green. And the other disciple, he was not doing anything, only he was sitting back. Then when Gurudev came, have you made the ashram green? Then he put on some green sunglasses. Yes, Gurudev, everything is green. Means, one who completely surrenders to Bhagavan, automatically all his eating and activities and donations and charity are performed for the happiness of Bhagavan. There's no need to offer separately. Otherwise, you might end up like...
What did he say?
Ekalavya. Ekalavya. He was also so foolish like that. When Jonacharya asked him, hey, give your thumb as Dakshi in donation,
Is there anything superior to this? Then, see, Ramana Doi established karma tyag as being superior. Ajnayavam gunatosan mayadistam apisakam dharma samtyaga yasarvam yakonati mad arpanam. One who examines very thoroughly the process of vanashram, he sees there are so many faults in it. Therefore, what he should be able to do, dharma samtyaga yasarvam yakoros marvajan sacha uttamam. One who gives up the process of vanashram for my bhajan, before there is no mention of my bhajan, only offering the fruits of bhajan. Therefore, here is the mention of marvajan, dharma samtyaga yasarvam marvajan sacha uttamam. That is superior. And also one Gita, Sarva Dharma Paditaja, Mamekam Sadanam Vaja, Hamtam Sarva Papityo, Matisya Vimasucha. The highest instruction Krishna gave in the Gita, Mahaprabhu rejected as external. Why? Because the devotee, why is he surrendering completely to Krishna? Oh my God, I've done so many sins. I gave up my vanashram. If I don't surrender to Krishna, I'm going to go to hell and go to the lower species. Therefore, he is not surrendering to Krishna out of pure love and affection. To serve Krishna, he is surrendering to Krishna out of fear of going to hell, in Armageddon. Therefore, Mahaprabhu, for these two things, Mahaprabhu also rejected that as being external. Then, above that, Mahaprabhu said, is there anything else that Ramananda Roy quoted? Bhagavad Gita, Brahmaputta Prasadamaya. Here the devotee has achieved liberation. Brahmaputta, neither he desires anything, nor does he lament for anything, but he is not desiring Bhagavan, nor is he lamenting for Bhagavan. No? Only he has rejected his world, but he has not established relationship with Krishna. But mad bhakti, he can achieve bhakti. When? If he gets sadhu sangha. Therefore the jnani, who is liberated from this world, he has no material desires, but he has not developed firm service mood to see Krishna, but he can develop that mood if he gets the association of devotees, like we heard, Atmarama Stimuleo Nigrant Api Arukunam. 18 explanations Mahaprabhu gave in this verse. Then Mahaprabhu explained, that is also external, jnana mishra bhakti. So liberation has been rejected by Mahaprabhu as external. The jnanis perform austerities for a very long time to achieve liberation. There were one time liberation asked, Krishna, how I can get liberation? Mukti kohe gopal sere mera mukti bataye vajraj mukti lagaye mukta mukti vajraj. Liberation asked, something like that. Liberation asked, Krishna, how I can get liberation? Krishna said, you put some food up the vajraj, dust of Vrindavan on your head. Then you can be liberated. Jnane praya sanguta paschanamante eva jivanti sakma karatam varadi avatam stane svita sutivakaram tanovatmano vete praya sa ajita ajita stavista istrilokyam. So, in this verse, when Mahaprabhu heard this verse, he said, Eho hoi, this is good. Because here is touch of Sudha Bhakti. This is the beginning of Sudha Bhakti. Because after liberation, Krishna says, Aap in Gita, Mam Choya, Vyavacharana, Bhakti Yoga na Sevati, Sadguna, Samatityan, Brahma Bhuya Yakalpate. After liberation one begins my bhajan. How? By the process of hearing. Therefore, this is the ninefold process of bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Bhada Sevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmana Vedanam. Now this is called Krishna Anusilanam, the cultivation of devotional service performed for the happiness of Sri Krishna. And where does bhakti begin from?
the process of hearing. Because I mentioned here nicely from Sadhguru Vaishnava, you cannot perform kirtan. If you do not perform pure kirtan, you cannot perform smaran. Therefore, jnane prayasam. Don't try so much for jnana. Guru Maharaj says, very hard to understand Bhagavan, how he performs the creation, how many potencies he has, how fat he is, how much he weighs, how tall he is. Very hard to understand. Therefore, don't break your head on all that stuff. Guru Maharaj says, just hear Harikatha. By hearing Harikatha, you will automatically achieve all types of tantric jnana. By hearing Harikatha, automatically one develops all good qualities of renunciation and knowledge by hearing. But not only that, one stane stita shrutikatam sarovatmano veya. Wherever you are, stay there. Means if you're a sannyasi, don't need to change your ashram and get married, stay sannyasi. If you're brahmachari, stay brahmachari. If you're grihastha, don't give up your children, stay married. What you do, these things are external. Changing here and there will not help you. Just come and hear Harikatha. No need to change here and there. Or another meaning, stane, stita, shrutikatam. Wherever Harikatha is there, run there and hear nicely. We should have some greed to hear that even though Bhagavan cannot be controlled by anyone, he is controlled by that person who likes to hear Harikatha from superior Vaishnavas.
Tomorrow also, we will continue this same subject and you should be ready for further.
Tomorrow. Thank you. Akji Bolvan ki? Kalka announce kar dibe.
Tomorrow I will speak on that subject and you should all be ready for that.
Hare Krishna.
Yeah, yeah. Hare Krishna, Nasipa Kipa announced tomorrow's program. For today, Amadir Navati Dham Pracharajana meeting away. Pracharaj meeting of Buddha Thagan, Upasi Thagan, Sipa Purigaraj Maharaj, Kipa Maharaj, Puni Maharaj, Janatan Maharaj.